एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि शायद हमारे समय के एक तरह से ब्रह्मांडीय कवि कहे जा सकते हैं। कार्ल सेगन, एक ऐसा नाम जिसने खगोल विज्ञान के, मतलब जो बड़े जटिल रहस्य हैं, उन्हें करोड़ों लोगों के लिए दिलचस्प कहानियों में बदल दिया।
हाँ, बिल्कुल सही कहा। सेगन की खासियत ही यही थी कि उन्होंने विज्ञान को सिर्फ वो लैब की चीज नहीं रहने दिया।
हाँ,
उन्होंने इसे हमारी रोजमर्रा की बातचीत का, हमारी उत्सुकता का हिस्सा बना दिया। उनका सबसे बड़ा योगदान शायद यही है कि उन्होंने हमें सोचना सिखाया कि भाई ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है और जो हम सुन रहे हैं उसमें सच को झूठ से कैसे अलग करें।
और ये बातें तो आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है ना?
बिल्कुल,
यानी करीब 1934 से लेकर 1996 तक विज्ञान के लिए देखा जाए तो एक कमाल का दौर था।
सोचिए, इंसान पहली बार अंतरिक्ष में जा रहा था, चांद पर कदम रख रहा था। ये स्पेस एज की मतलब शुरुआत थी।
लेकिन इसी समय एक और बड़ी चीज चल रही थी, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर।
हाँ,
अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की वो जबरदस्त होड़ जिसने शायद अंतरिक्ष की दौड़ को और भी तेज कर दिया था। ये तो बड़ा अजीब सा माहौल रहा होगा। मतलब एक तरफ तो अनंत आकाश को छूने का सपना।
हाँ।
और दूसरी तरफ धरती पर ही परमाणु युद्ध का खौफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये विरोधाभासों से भरा दौर था। एक तरफ अपोलो मिशन चांद पर पहुंच रहे थे, मंगल पर वाइकिंग यान उतर रहे थे, वोएजर यान तो सौर मंडल के बाहरी किनारों की तरफ निकल पड़े थे।
हाँ, वो सब हो रहा था।
और इन सब में सेगन की कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूमिका जरूर थी। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ वो परमाणु विनाश का डर समाज पर हावी था। इसी तनाव के बीच आप देखें तो वैज्ञानिक सोच भी बढ़ रही थी और पर्यावरण को लेकर चिंताएं भी, वो भी जन्म ले रही थी।
हाँ, और इसी दौर में आइजैक एजिमोव जैसे लोग थे, विज्ञान कथा लेखक, और जैक्स कुस्टो जैसे समुद्री खोजकर्ता।
जी,
जाहिर है माहौल बहुत ही उत्तेजक, मतलब इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग रहा होगा। सेगन पर किन लोगों का गहरा असर पड़ा? क्या कोई थे जिन्होंने उनकी सोच को एक खास दिशा दी हो?
हाँ, दो नाम खास तौर पर लिए जाते हैं।
जी,
एक थे खगोल शास्त्री हार्लो शिपले,
आनुवंशिकीविद, जेनेटिस्ट हर्मन मुला।
हर्मन मुला,
हाँ।
मुलर ने सेगन के मन में मानवता के भविष्य को लेकर, खासकर परमाणु युद्ध के खतरों के प्रति एक गहरी चिंता पैदा की, और ये चीज उनके काम में बार बार झलकती भी है।
अच्छा, तो ये तो बाहरी प्रभाव थे, लेकिन सेगन खुद कहाँ से आए थे? उनके बचपन के बारे में कुछ बताइए। वो क्या चीज थी जिसने उन्हें तारों की तरफ खींचा? कहते हैं ब्रुकलिन की गलियों से शुरू हुआ था ये सफर।
हाँ बिल्कुल, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में यूक्रेनी, रूसी और पोलिश बैकग्राउंड के एक यहूदी आप्रवासी परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन की दो घटनाओं ने जैसे उनकी किस्मत ही तय कर दी।
अच्छा, कौन सी?
एक 1939 का न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर देखना, जहाँ भविष्य की तकनीकें दिखाई गई थी, और दूसरा
था पुस्तकालय जाना और लाइब्रेरियन से पूछना तारे क्या होते हैं, जब उन्हें बताया गया कि तारे हमारे सूरज जैसे हैं, बस बहुत दूर हैं, तो उनका दिमाग जैसे खुल गया। यहीं से वो जुनून शुरू हुआ जो जिंदगी भर उनके साथ चला। और हाँ, दूसरा विश्व युद्ध भी उन्होंने देखा, जिसने शांति और तर्क की जरूरत पर उनके यकीन को और पुख्ता कर दिया।
और फिर उनकी जो औपचारिक शिक्षा हुई शिकागो विश्वविद्यालय का, सुनाया उनके जीवन में बड़ा योगदान था।
जी हाँ, उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से ही 1960 में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में पीएचडी की। शिकागो उस समय बौद्धिक रूप से बहुत ही वाइब्रेंट जगह थी। करियर के शुरुआती दिनों में ही वे नासा के ग्रहों के मिशन से जुड़ गए थे, मैरिनर, वाइकिंग।
हाँ, सुना है।
इससे उन्हें एक प्रमुख ग्रह वैज्ञानिक के तौर पर पहचान मिली।
और यहीं पर उन्होंने वो मशहूर काम भी किया था, पायोनियर पट्टिका और वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड को डिजाइन करने में मदद, वो एलियंस के लिए संदेश।
हाँ हाँ, ये कमाल का आइडिया था। सोचिए जरा, अंतरिक्ष में एक संदेश वाली बोतल भेजना, इस उम्मीद में कि शायद कभी कोई और सभ्यता इसे पाए।
गजब।
पायोनियर पट्टिका पर मानव आकृति थी, पृथ्वी का पता था, और वो एजर गोल्डन रिकॉर्ड तो और भी मतलब महत्वाकांक्षी था। उसमें पृथ्वी की आवाजें, संगीत, तस्वीरें।
हाँ।
और यहाँ तक कि उनकी पत्नी एन रायन की मस्तिष्क तरंगे भी थी, रिकॉर्ड की गई जब वो प्यार के बारे में सोच रही थी।
ये तो सचमुच अद्भुत है, मतलब प्रेम का संदेश अनंत ब्रह्मांड में भेजना। लेकिन लेकिन एक बात सुनिए, कि हार्वर्ड में उन्हें स्थायी पद मतलब टेन्योर नहीं मिला था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता इतने काबिल इंसान के लिए?
हाँ, ये उनके करियर का एक विवादास्पद मोड़ रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि हार्वर्ड के कुछ पुराने स्थापित प्रोफेसर उनके विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के जो प्रयास थे उनको शायद अकेडमिक रूप से उतना गंभीर नहीं मानते थे।
अच्छा, ये भी होता है।
खैर, जो भी वजह रही हो, 1968 में वे कॉर्नेल विश्वविद्यालय चले गए और शायद ये अच्छा ही हुआ उनके लिए, क्योंकि कॉर्नेल ने उन्हें शोध और पब्लिक आउटरीच मतलब आम लोगों तक पहुंचने के लिए दोनों के लिए पूरी आजादी दी और वो जीवन भर वहीं रहे।
और शायद इसी आजादी का नतीजा था कॉस्मोस, वो 1980 की टीवी श्रृंखला जिसे उन्होंने अपनी पत्नी एन रेनियन के साथ मिलकर लिखा था। उसने तो जैसे पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था।
बिल्कुल, कॉस्मोस अ पर्सनल वॉयज सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, वो एक घटना थी, एक फिनोमिनन। पीबीएस के इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बनी वो।
हाँ,
इसने विज्ञान को, खासकर खगोल विज्ञान को, लाखों घरों के ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। सीगन की वो कहानी कहने की कला, उनका जो जोश था और वो विजुअल्स, सब कुछ कमाल का था।
और इसी दौरान उन्होंने द प्लैनेटरी सोसाइटी की भी सह स्थापना की थी, इसका क्या मकसद था?
हाँ, ये भी उनकी एक बहुत बड़ी देन है। ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो आम लोगों को अंतरिक्ष अन्वेषण और सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज से जोड़ता है, और आज भी ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस एडवोकेसी ग्रुप है।
ये तो हुई उनकी जिंदगी और उनके कामों की कुछ झलकियां, लेकिन सेगन के विचारों की गहराई क्या थी? उनके मूल दर्शन को हम कैसे समझे? आपने शुरू में वैज्ञानिक मानवतावाद का जिक्र किया था, ये क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि विज्ञानी सब कुछ है और कुछ नहीं?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वैज्ञानिक मानवतावाद या साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म का मतलब है कि सेगन मानते थे कि इंसान अपनी समस्याओं का हल, चाहे वो गरीबी हो, युद्ध हो, पर्यावरण का संकट हो, विज्ञान, तर्क और आपसी सहानुभूति मतलब करुणा से ढूंढ सकता है।
अच्छा,
बिना किसी अलौकिक शक्ति या धार्मिक हठधर्मिता के सहारे के, ये एक उम्मीद भरा नजरिया है जो इंसान की क्षमता पर विश्वास करता है।
तो ये उनके सोचने का आधार था एक तरह से, और इसी से उनके बाकी मशहूर विचार निकले होंगे, जैसे वो ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य वाली बात, वो क्या है?
हाँ हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य यानी कॉस्मिक पर्सपेक्टिव का मतलब है इस विशाल अरबों साल पुराने ब्रह्मांड में पृथ्वी और इंसानियत की छोटी सी जगह को समझना। जब आप ये समझते हैं कि हम एक छोटे से ग्रह पर एक साधारण से तारे के चारों ओर घूम रहे हैं और ब्रह्मांड में ऐसे अरबों खरबों तारे और ग्रह हैं, तो आपका अहंकार कम होता है और आश्चर्य की भावना बढ़ती है। ये हमें हमारे आपसी झगड़ों और मतभेदों से ऊपर उठकर देखने में मदद करता है।
ये नजरिया तो है कमाल का, लेकिन क्या आम इंसान के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में इसे याद रखना मुश्किल नहीं होता? हम तो अपनी छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं।
मुश्किल तो है, बिल्कुल है, लेकिन सेगन का यही प्रयास था कि इसे आसान बनाया जाए, सुलभ बनाया जाए। उनका एक और महत्वपूर्ण विचार था वैज्ञानिक संदेहवाद यानी साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म।
संदेहवाद मतलब शक करना?
सिर्फ शक करना नहीं, सेगन का एक कमाल का नजरिया ये था कि सवाल पूछना सिर्फ लैब कोट पहने वैज्ञानिकों का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है रोजमर्रा की जिंदगी में। उन्होंने तो बाकायदा एक बकवास पहचानने की किट दी थी, मतलब बलोनी डिटेक्शन किट।
अच्छा, वो क्या थी?
वो कुछ सिद्धांत थे, कुछ तरीके थे ताकि हम सुनी सुनाई बातों, अफवाहों, छद्म विज्ञान और असली जानकारी में फर्क कर सकें।
और यहीं से उनका वो मशहूर कथन आता है जो अक्सर सुनने को मिलता है, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस।
बिल्कुल बिल्कुल, ये आज के फेक न्यूज और गलत सूचनाओं के दौर में कितना जरूरी है ना?
हाँ, बहुत ज्यादा।
बिना ठोस सबूत के किसी भी बड़े अविश्वसनीय लगने वाली बात को मत मानो, सवाल पूछो, सबूत मांगो, और ये सिर्फ विज्ञान पर ही नहीं जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। ये सिर्फ शक करना नहीं है बल्कि ये सच्चाई तक पहुंचने का एक तरीका है, एक मेथड है।
और इसी नजरिए से, इसी मेथड से उन्होंने शायद पृथ्वी को देखा एक फीका नीला बिंदु या पेल ब्लू डॉट।
हाँ, ये उनकी गहरी पर्यावरण चेतना को दिखाता है। जब वॉयेजर 1 यान ने 6 अरब किलोमीटर दूर से पृथ्वी की तस्वीर ली तो उसमें हमारी प्यारी पृथ्वी एक छोटे से धुंधले नीले बिंदु जैसी दिख रही थी। सूरज की एक किरण में तैरते हुए धूल के कण की तरह। सेगन ने कहा, देखो ये है हमारा घर, इसी छोटे से बिंदु पर पूरी इंसानियत रहती है, सारे युद्ध, सारी खुशियां, सारे धर्म, सब कुछ यही है। क्या हमें इसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए? ये तस्वीर हमें हमारी नाजुकता और हमारी साझा जिम्मेदारी का एहसास कराती है।
उन्होंने सेटी यानी एलियन जीवन की खोज को भी बहुत गंभीरता से लिया था, है ना, जबकि कई वैज्ञानिक शायद इसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते थे उस समय।
हाँ, सेगन मानते थे कि ये सवाल, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहरे सवालों में से एक है।
हाँ, है तो।
और इसका जवाब अटकलों से या कहानियों से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से खोजना चाहिए। उन्होंने सेटी को एक गंभीर वैज्ञानिक उद्यम बनाने में बहुत मदद की।
एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये कि सेगन ने विज्ञान को कभी नीरस या शुष्क नहीं बनने दिया। मतलब उनके लिए विज्ञान और आश्चर्य, साइंस और वंडर, ये साथ साथ चलते थे।
ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी शायद। आम धारणा होती है ना कि विज्ञान चीजों का रहस्य खत्म कर देता है, सब कुछ समझा देता है तो जादू खत्म हो जाता है।
हाँ, ऐसा लगता है कई बार।
सेगन कहते थे, नहीं, विज्ञान रहस्य को खत्म नहीं करता, बल्कि और गहरे, ज्यादा खूबसूरत रहस्यों को उजागर करता है। एक इंद्रधनुष क्यों बनता है, ये जानना उसकी सुंदरता को कम नहीं करता, बल्कि उसे और बढ़ा देता है। उन्हें इस बात की भी गहरी चिंता थी कि इंसान अपनी तकनीक का इस्तेमाल खुद को ही नष्ट करने में ना कर ले, खासकर परमाणु हथियार और पर्यावरण विनाश।
हाँ, वो परमाणु शीत वाला।
हम शोध पत्र भी लिखा था जिसमें बताया गया था कि एक बड़े परमाणु युद्ध के कितने भयानक जलवायु परिणाम हो सकते हैं, पूरी धरती जम सकती है।
उनके लेखन ने भी दुनिया पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है, जैसे उनकी किताब द ड्रैगन्स ऑफ ईडन, जिसके लिए उन्हें पुलित्ज़र पुरस्कार भी मिला था।
हाँ, 1977 में आई थी ये किताब। इसमें उन्होंने मानव बुद्धि के विकास की कहानी कही थी, मतलब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसमें उन्होंने वो ब्रह्मांडीय कैलेंडर वाला अद्भुत रूपक इस्तेमाल किया था।
हाँ, वो क्या था?
सोचिए, अगर ब्रह्मांड का पूरा 13.8 अरब साल का इतिहास एक कैलेंडर साल में समेट दिया जाए, बिग बैंग 1 जनवरी को हुआ, तो इंसान का पूरा ज्ञात इतिहास, मतलब जब से हमने लिखना शुरू किया, वो उस साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर की रात के आखिरी कुछ सेकंड्स में ही आता है।
बाप रे, सिर्फ कुछ सेकंड्स?
हाँ, ये हमें हमारी नवीनता का, हमारी तुच्छता का एहसास कराता है उस बड़े स्केल पर।
और फिर कॉस्मोस टीवी सीरीज और किताब दोनों ही।
कॉस्मोस 1980 तो एक मील का पत्थर है, सही में। बिग बैंग से लेके तारों के बनने बिगड़ने तक, ग्रहों की खोज, जीवन की उत्पत्ति, इतने जटिल विषयों को उन्होंने इतनी खूबसूरती से, इतनी काव्यात्मक भाषा और इतने आश्चर्य के साथ समझाया कि वो सबके लिए एकदम सुलभ हो गए।
उनका इकलौता साइंस फिक्शन नॉवल कॉन्टैक्ट 1985 भी बहुत मशहूर हुआ, उस पर बाद में फिल्म भी बनी जूडी फॉस्टर के साथ।
कॉन्टैक्ट, उसमें उन्होंने ये कल्पना की कि अगर हमें किसी दूसरी बाहरी सभ्यता से कोई संदेश मिले तो क्या होगा, उसके वैज्ञानिक, राजनीतिक, धार्मिक और व्यक्तिगत प्रभाव क्या होंगे। ये सिर्फ एलियंस की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसान की खोज, उसके विश्वास और उसके संदेह की कहानी है। बहुत गहरी किताब है वो।
और अपने जीवन के आखिर में आई उनकी किताब द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड, साइंस एज ए कैंडल इन द डार्क, 1995। ये किताब तो जैसे आज के लिए ही लिखी गई लगती है ना।
बिल्कुल, ये किताब वैज्ञानिक सोच, तर्क और संदेहवाद का एक तरह से घोषणा पत्र है। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे छद्म विज्ञान, अंधविश्वास और अतार्किक सोच हमें गुमराह करती है, और इसी में उन्होंने वो मशहूर बकवास पहचानने की किट दी थी। ये किताब आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है, जब हम हर तरफ से सूचनाओं और दावों से घिरे हुए हैं।
और जाहिर है, अ पेल ब्लू डॉट 1994 किताब, जो उस मशहूर तस्वीर से प्रेरित थी।
हाँ, वो किताब उसी ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य का विस्तार है। वो हमें बार बार याद दिलाती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा घर कितना छोटा और नाजुक है, और हमें इसे बचाने की कितनी जरूरत है। इन किताबों के अलावा उनका वैज्ञानिक काम भी बहुत महत्वपूर्ण था, जैसे शुक्र ग्रह पर ग्रीन हाउस प्रभाव को समझना।
अच्छा, हाँ।
मंगल पर धूल भरी आंधियों और मौसम के बदलावों को समझाना, और जैसा हमने पहले कहा, परमाणु शीत की अवधारणा देना।
अगर हम सेगन की तुलना इतिहास के दूसरे बड़े विचारकों से करें, जैसे डार्विन या आइंस्टाइन, तो उनका कद कहाँ ठहरता है? क्या वो उसी लीग में थे?
देखिए, तुलना करना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है। डार्विन ने जीव विज्ञान बदल दिया, आइंस्टाइन ने भौतिकी।
हाँ।
सेगन ने शायद कोई एक वैज्ञानिक सिद्धांत उस तरह से नहीं बदला।
हाँ।
लेकिन उन्होंने विज्ञान और आम जनता के बीच वो पुल बनाया जो बहुत कम लोग बना पाते हैं। वो पारंपरिक दार्शनिकों से भी अलग थे। उनकी फिलॉसफी हवा में नहीं थी, वो वैज्ञानिक खोजों और सबूतों पर आधारित थी।
तो क्या हम उन्हें जैसे ज्ञानोदय काल वोल्टेयर थे वैसा कुछ कह सकते हैं, जो तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल करके पुरानी सोच और हठधर्मिता को चुनौती देते थे?
हाँ, ये एक अच्छी तुलना है, बिल्कुल। सेगन एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे, एक सार्वजनिक बुद्धिजीवी जो वैज्ञानिक नजरिए को इंसानी मूल्यों और समाज की बेहतरी से जोड़ते थे। वो मानते थे कि विज्ञान सिर्फ चीजें जानना नहीं है बल्कि बेहतर इंसान बनना भी है।
सही बात है।
आज शायद नील डिग्रासे टाइसन उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जो खुद सेगन से बहुत प्रेरित हैं।
हाँ, उनका नाम आता है अक्सर। तो सेगन की विरासत क्या है, आज वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? शायद सबसे बड़ी बात तो यही है कि उन्होंने विज्ञान को सबका बना दिया।
निश्चित रूप से, विज्ञान का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ साइंस, ये उनकी सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने लाखों लोगों को, खासकर युवाओं को, विज्ञान की तरफ आकर्षित किया, उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया। वो आधुनिक साइंस कम्युनिकेशन के पितामह माने जाते हैं।
सही।
कॉस्मोस ने साइंस डॉक्यूमेंट्रीज के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया था,
और सेटी और प्लैनेटरी सोसाइटी को लेकर भी उनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है।
हाँ, उन्होंने सेटी को मजाक या फैंटेसी के दायरे से निकालकर एक गंभीर वैज्ञानिक खोज का विषय बनाया, और प्लैनेटरी सोसाइटी आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों को अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े हुए है, उन्हें इसका हिस्सा बनाती है।
और आज के संदर्भ में जब क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, गलत सूचनाएं इतनी तेजी से फैलती हैं, तब सेगन कितने प्रासंगिक हैं?
ओह, शायद पहले से कई ज्यादा। उनका वो आलोचनात्मक सोच का संदेश, सबूतों पर आधारित बात करने की सीख, पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता और वो ब्रह्मांडीय नजरिया, ये सब आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत जरूरी हैं। वो विज्ञान को अंधेरे में मोमबत्ती कहते थे, कैंडल इन द डार्क।
हाँ।
अज्ञानता, अंधविश्वास और डर के अंधेरे में ज्ञान और तर्क की रोशनी, ये रूपक आज भी उतना ही शक्तिशाली है।
उनके कुछ वाक्य तो जैसे अमर हो गए हैं। हाँ। अक्सर सुनने को मिलते हैं, जैसे वो कहते थे, हम तारों की धूल से बने हैं, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। इसका क्या मतलब है असल में?
ये सिर्फ कविता नहीं है, ये वैज्ञानिक सच है। हमारे शरीर में जो भारी तत्व हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा वगैरह, वो सब अरबों साल पहले तारों के अंदर बने थे।
अच्छा।
जब तारे पैदा हुए, जिए और फिर सुपरनोवा में फट गए, तो हम सचमुच शाब्दिक रूप से तारों की संतान हैं। यह हमें ब्रह्मांड से सीधे तौर पर जोड़ता है।
कमाल है। और वो संदेहवाद वाला, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है।
ये तो जैसे क्रिटिकल थिंकिंग का, आलोचनात्मक सोच का मूल मंत्र बन गया है। कोई भी अजीब अविश्वसनीय दावा सुने तो उसे यूं ही ना मान ले, पुख्ता सबूत मांगे।
एक और है जो सुनने में बहुत गहरा लगता है, ब्रह्मांड हमारे भीतर है, हम तारों की धूल से बने हैं, हम ब्रह्मांड के लिए खुद को जानने का एक तरीका है। द कॉस्मोस इज विद इन अस, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ, वी आर अ वे फॉर द यूनिवर्स टू नो इटसेल्फ।
हाँ, ये उनके दार्शनिक झुकाव को दिखाता है। उनका मानना था कि हम, यानी सोचने समझने वाले प्राणी, इस विशाल ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं, और जब हम विज्ञान के जरिए ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक तरह से ब्रह्मांड खुद को ही हमारे जरिए जान रहा होता है।
वाह।
मानव चेतना ब्रह्मांड के आत्मज्ञान का एक तरीका है, ऐसा वो मानते थे।
और वो पेल ब्लू डॉट वाली बात तो वो तो रोंगटे खड़ा कर देती है। उस बिंदु को फिर से देखो, वो यहां है, वो घर है, वो हम हैं, सूरज की किरण में तैरते धूल के एक कण पर। लुक अगेन एट दैट डॉट, दैट्स हियर, दैट्स होम, दैट्स अस, ऑन अ मोट ऑफ डस्ट सस्पेंडेड इन अ सनबीम।
सोचिए, 6 अरब किलोमीटर दूर से ली गई तस्वीर पर ये शब्द, ये हमें हमारी हैसियत याद दिलाते हैं। इस विराट ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं, कितने नाजुक, और ये छोटा सा नीला बिंदु कितना कीमती है। ये विनम्रता और जिम्मेदारी का एक शक्तिशाली आवाहन है।
उनमें हास्य की भी अच्छी समझ थी लगता है, जैसे उनका वो कहना, खुले दिमाग का होना फायदेमंद है, पर इतना भी नहीं कि आपका दिमाग ही गिर जाए।
इट पेज टू कीप एन ओपन माइंड बट नॉट सो ओपन योर ब्रेन्स फॉल आउट।
हाँ हाँ, ये उनके संतुलित संदेहवाद का सार है। मतलब नए विचारों के लिए खुला होना जरूरी है, लेकिन इतने भी नहीं कि आप बिना जांचे परखे कुछ भी मान लें। तर्क और सबूत की कसौटी जरूरी है। उनके बारे में कुछ दिलचस्प किस्से भी हैं। सुना है वो शौकिया जादूगर भी थे, मैजिक ट्रिक्स करते थे, ये क्यों?
हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। वो अक्सर जादू की ट्रिक्स दिखाते थे ये समझाने के लिए कि हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस हमें कितनी आसानी से धोखा दे सकती हैं।
अच्छा,
ये एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति की जरूरत को समझाने का तरीका था कि हमें अपनी आंखों देखी या कानों सुनी पर भी सवाल उठाना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से जांच करनी चाहिए।
और एक किस्सा उनके मारिजुआना के कथित समर्थन से जुड़ा है। उन्होंने मिस्टर एक्स के नाम से कुछ लिखा था।
जी हाँ, ये उनकी जिंदगी का एक कम चर्चित लेकिन हाँ विवादास्पद पहलू रहा है। उन्होंने एक छद्म नाम से अनोनिमसली एक निबंध लिखा था जिसमें उन्होंने मारिजुआना के सेवन से होने वाले कथित बौद्धिक और रचनात्मक फायदों के बारे में अपने निजी अनुभव साझा किए थे। ये उस समय काफी साहसिक कदम था।
वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड वाली बात फिर से याद आ रही है। एंड्रयान की मस्तिष्क तरंगे, क्या कमाल की रोमांटिक बात है ये,
है ना? एंड्रयान उनकी तीसरी पत्नी थी और उनकी सबसे करीबी क्रिएटिव पार्टनर भी। कॉस्मोस, कॉन्टैक्ट, पेल ब्लू डॉट, इन सब में उनका बड़ा योगदान था। वॉयेजर रिकॉर्ड पर उनकी ब्रेन वेव्स शामिल करना सेगन का एक तरीका था शायद ये दिखाने का कि विज्ञान और भावनाएं, तर्क और प्रेम, ये अलग अलग नहीं है, ये साथ चल सकते हैं।
और वो बिलियंस एंड बिलियंस वाला जुमला, कहते हैं वो खुद असल में वैसे नहीं बोलते थे।
हाँ, ये मजेदार किस्सा है। मशहूर टीवी होस्ट जॉनी कार्सन उनकी नकल करते हुए ये जुमला बोलते थे, सेगन असल में बिलियन, अरब और मिलियन, 10 लाख के बीच के भारी अंतर को समझाने के लिए बी पर जोर देते थे, बिलियंस, ताकि फर्क समझ आए।
अच्छा,
कार्सन ने इसी को पकड़कर एक पैरोडी बना दी जो इतनी मशहूर हुई कि लोग समझने लगे सेगन खुद ऐसे बोलते हैं। ये दिखाता है कि सेगन बड़ी संख्याओं के पैमाने को, स्केल को लोगों तक पहुंचाने के लिए कितने गंभीर थे।
तो कुल मिला के कार्ल सेगन सिर्फ एक खगोल शास्त्री नहीं थे, वो एक पुल थे विज्ञान और आम इंसान के बीच, तर्क और आश्चर्य के बीच, ज्ञान और जिम्मेदारी के बीच।
बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने हमें ब्रह्मांड की विशाल कहानी में हमारी छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को समझाया। उन्होंने विज्ञान की जटिल भाषा को उम्मीद, जिम्मेदारी और मानवीय क्षमता की एक ऐसी कहानी में बदल दिया जिसे कोई भी समझ सकता है और उससे प्रेरित हो सकता है। उनका संदेश था, हम सब इस फीके नीले बिंदु के यात्री हैं और हमें मिलके इसका ख्याल रखना है।
तो श्रोताओं, फिर यह आज का अंतिम विचार यहीं छोड़ जाते हैं। आज की इस तेज रफ्तार, सूचनाओं से भरी और कई तरह के संकटों से जूझती दुनिया में कार्ल सेगन की सिखाई बातें, सवाल पूछना, सबूत मांगना, ब्रह्मांडीय नजरिए से सोचना और अपने इस छोटे से ग्रह का ख्याल रखना, ये सब कितने मायने रखती हैं। क्या विज्ञान वाकई जैसा सेगन उम्मीद करते थे हमारे लिए अंधेरे में मोमबत्ती साबित हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।